परमात्मा की शक्तियों से भरपूर। हरेक का मन शांत है, सुखी है, सुरक्षित है। हरेक का शरीर स्वस्थ है। हरेक सुरक्षित है, निडर है, निश्चिंत है, खुश है। परमात्मा की शक्तियां पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का कवच है। मेरी सृष्टि सुरक्षित है। मेरा देश सुरक्षित है। मेरा परिवार सुरक्षित है। सफलता हमारे लिए निश्चित है। विजय हमारे लिए निश्चित है। परमात्मा का शुक्रिया। हरेक का शुक्रिया। हरेक जो अपना न सोचकर दिन रात सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।
हम तो सदा महफूज हुए हैं, दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं, दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं, भगवान तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी याद में। गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए ईश्वर तेरी याद में। मौला है तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में।
शांति, गुड इवनिंग शांति। बहुत सुंदर गीत हम सभी सुन रहे थे, क्या सुना हमने गीत में? क्या सुना हमने गीत में? कोई चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, कल हमने बात की थी, कल किस बारे में बात की थी? हमने कल कर्म सिद्धांत के बारे में बात की थी। बहुत सारी बातें हमने समझी कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, हमारा हर कर्म काउंटेबल है। फिर हमने वेरी गुड, अच्छा सबके सबके आंसर्स आ गए, वेरी गुड, हम सबने कुछ पा लिया है। सबसे पहले तू ही दिन बाबा, हम तो सदा महफूज है बाबा तेरी याद, वेरी गुड, अच्छे से सुनाए। तो क्या बात कर रहे थे हम, कर्म सिद्धांत के बारे में हमने कल बात की थी, और एक एक बात वहां पर शुरू हुई थी, वो थी 84 जन्मों की बात, 84 जन्मों की कहानी। तो आज हम पहले उसको थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद हम ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना कैसे हुई और कैसे शिव बाबा ने सारा ज्ञान हम सब मनुष्य आत्माओं को दिया, उस पर भी बात करेंगे। पर उन सभी से पहले हम सब क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम सब कुछ देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो सब जहां भी बैठे हैं सीधा होकर के बैठेंगे। जी आप कुछ कह रहे थे सुप्रिया दीदी?
गो अहेड।
तो अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे, सीधा होकर के बैठेंगे। मस्तक के बीच स्वयं के दिव्य ज्योति स्वरूप को देखें। जैसे स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा उसमें मस्तक में एक दिव्य ज्योति चमकती हुई नजर आ रही है, ठीक ऐसे ही स्वयं की भौतिक देह मस्तक त्रिकुटी के बीच स्वयं के दिव्य ज्योति स्वरूप को देखें। स्वयं को याद दिलाएं अपने निज स्वरूप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, चमकता हुआ तेजो मैं सितारा हूं, शांति मेरा ओरिजिनल नेचर, शांति मुझ आत्मा में समाई हुई है और मुझसे ये शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। जिस भी स्थान पर हम बैठे हैं, घर में, ऑफिस में, गार्डन में, अनुभव करें कि मस्तक से शांति के प्रकंपन, प्योरिटी के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं, चारों ओर का वातावरण एकदम शांत होता जा रहा है, सारी हलचल, लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सब फिनिश होती जा रही है। मुझ शांत स्वरूप आत्मा की शांति के प्रकंपन पूरे वातावरण को शांत करते जा रहे हैं। फिर से अपने शिव के ज्योति स्वरूप को देखेंगे। और इसी स्थिति में स्थित होकर हम आज इस यात्रा को प्रारंभ करें। ओम शांति। सब में मन को शांत किया, जो बहुत सारी ऊपर नीचे की वाइब्रेशन थी, कहीं की इधर की उधर की, अभी हम सब एक ही जगह पर एक ही फ्रीक्वेंसी में बैठे। तो कल हमने बात की थी कर्म सिद्धांत के बारे में, और वहां जो एक बात हमारी अधूरी रह गई थी वो थी 84 जन्मों की बात। हमने बात की थी ना, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है, कितने जन्म लेती है, कितने जन्म लेती है मनुष्य आत्मा? 84 लाख जन्म होते हैं या सिर्फ 84 होते हैं? क्या विचार? 84 होते हैं, ओनली 84। 84 लाख नहीं होते। 84 लाख की जो बात है कि 84 लाख योनियां, तो 84 लाख 84 लाख स्पीशीज हो सकती है संपूर्ण संसार में। देयर मे बी 84 लाख स्पीशीज प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड, बट हम 84 स्पीशीज में जाएं, आज मनुष्य है कल कुत्ता बने, परसों बिल्ली, फिर कुछ और, वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो 84 जन्म है ये हम कितने सालों में लेते हैं, कितने समय में हमारे 84 जन्म होते हैं? अंजना जी लिखते 5000 ईयर्स, वेरी गुड। अब एक चीज और इसमें जानने की है, एक चीज तो ये जानने की है कि ये जो 5000 वर्ष है ना, इसमें 84 बर्थ्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ना? तो देखिए, सत्युग में जब आत्मा, क्योंकि सत्युग की आत्मा प्योर है, हम फिर से उस सर्कल को याद करेंगे, सृष्टि चक्र को याद करेंगे, चारों युगों में हम देखते हैं हमारे कितने जन्म हुए, सत्युग, त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। सत्युग में आत्मा क्योंकि प्योर है, जब सोल प्योर है शरीर भी शुद्ध है, क्योंकि प्रकृति भी सतो प्रधान है, प्योर है, तो आत्मा और शरीर दोनों प्योर है। तो जो हमारी एवरेज लाइफ है, एवरेज उम्र है मनुष्य की, देवात्माओं की, वो कितनी होगी? वो लगभग, जो अप्रोक्सीमेट शिव बाबा ने हमें बताया है, वो है 150 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स। तो अगर हम 1250 साल को देखें तो उसमें एक आत्मा के कितने जन्म हो सकते हैं? 8 जन्म, अराउंड 8 बर्थ्स एक मनुष्य आत्मा सत्युग में लेंगे। मैक्सिमम 8 जन्म किसी भी आत्मा के सत्युग में हो सकते हैं। फिर जब धीरे धीरे नीचे आए, सत्युग से समय ट्रांसफर हुआ, तो सत्युग से त्रेता युग में आते आते आत्मा की क्वालिटीज भी क्या हुई, कम हुई कि बढ़ गई? क्या विचार है? आत्मा की क्वालिटीज कम हो गई। और अगर आत्मा की क्वालिटीज सत्युग से अभी तक आते आते, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग तक आते आते कम होती गई, तो फिर क्या होगा? उम्र तो कम होती जाएगी लेकिन जन्म बढ़ते जाएंगे, है ना? उम्र पहले 150 साल थी तो जन्म 8 थे लगभग, फिर उम्र थोड़ी और कम हो गई, लगभग 125 साल, 120, है ना, 125, किसी का 123 भी हो सकता है। तो एवरेज 120 से 125 के आसपास एवरेज एज हो गई, तो नंबर ऑफ बर्थ क्या होंगे, लगभग 4 जन्म बढ़ जाते हैं। तो त्रेता युग में बाबा ने जो हमें बताया है वो बताया है कि त्रेता युग में एक मनुष्य आत्मा के कितने जन्म हो गए? 12 जन्म। फिर समय और आगे गया, फिर क्या हुआ? फिर हमारी जो एवरेज लाइफ थी वो और कम हो गई। समय उतना ही है 1250, पर क्योंकि अब हम मनुष्य आत्माएं अपवित्रता की राह पर चलने लग गई, अब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आयु और कम हो गई। आयु और कम हो गई तो फिर क्या हुआ? मनुष्य की आयु और कम होने लगी, क्योंकि आत्मा बार बार जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आके आत्मा इम्प्योरिटी की ओर भी बढ़ गई, आत्मा की शक्ति भी कम होने लगी, तो जन्म बढ़ जाएंगे। तो कितने जन्म हुए त्रेता युग में? होते हैं 21 जन्म। समय वही है लेकिन जन्म ज्यादा हो गए। और कलयुग में आए तो अब देखिए, आप सत्युग त्रेता में तो हमारे कर्म भी अकर्म थे, लेकिन द्वापर युग में आकर के हमने विकारों के वशीभूत होकर के जो भी कर्म किए वो कितने थे? वो कर्म भी बहुत विकर्म थे। विकर्म थे तो हमारा हिसाब किताब ज्यादा बना, हमारे सिर पे पापों का बोझा हुआ। और जब हम आत्मा नया शरीर लेती है तो हम सब जानते हैं ना, जन्म होना और मृत्यु होना कितने पेनफुल प्रोसेस है। बच्चा कितना छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, फिर वो कैसे कैसे बड़ा होता है, गर्भ में भी उसको कितना दुख झेलना पड़ता है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कलयुग आगे बढ़ता गया, हमारी एवरेज एज और भी कम हो गई। आज तो देखो कोई एवरेज एज ही नहीं है, कोई किसी भी उम्र में शरीर छोड़ देता है, छोटा बच्चा भी, कोई बुजुर्ग भी, जवान भी, कोई वो नहीं रहा। तो कलयुग में आते आते मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है? 42 बर्थ्स। अब देखिए सत्ययुग के कितने थे? 8, त्रेता के 12, द्वापर के 21 और कलयुग के 42। टोटल करिए कितना हुआ, कितना हुआ? 8 + 12 + 21 + 42, 83। एक जन्म कहाँ रह गया? हमने देखा ना 84 जन्मों की कहानी है, एक कौन सा मिसिंग रह गया? एक ये जन्म है हमारा, जो जन्म हम अभी जी रहे हैं। वैसे दुनिया के हिसाब से तो, ये शरीर के हिसाब से तो 84 बर्थ्स है, लेकिन अभी हमको एक नई समझ, नया ज्ञान, नई कॉन्शियसनेस आई है कि मैं बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यही तो कह रहे हैं ना, हम सभी हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमने परमात्मा को एक तरह से परमात्मा की गोद ली है, या शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, हम ये कह रहे हैं, तो हम उनके एडॉप्टेड बच्चे हैं। ये संगम युग का जो हमारा एक जन्म है ना, ये शरीर वही है लेकिन अब यहाँ से जन्म हुआ है। कॉन्शियसनेस हमारी बच्चे की बन चुकी है, कॉन्शियसनेस में हमें समझ आया मेरा नया जन्म हुआ है। पहले तक तो ये पता था ना, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, उनकी इतनी प्रॉपर्टी, वो मुझे मिलेगी। लेकिन अब हमें समझ आ गया कि मेरे फादर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, जो स्वर्ग के रचयिता हैं, और अब उनसे ये सब कुछ मुझे क्लेम करना है, है ना? जैसे हम अपने शरीर के माता पिता की प्रॉपर्टी को भी क्लेम करते हैं ना बच्चे के, इस पर मेरा अधिकार है। तो ऐसे ही शिव बाबा की जो प्रॉपर्टी है, सुख शांति ज्ञान पवित्रता आनंद, उसको भी अब हमको क्लेम करना है। तो ये हमारा 84वां डायमंड जन्म है, सबसे श्रेष्ठ जन्म है। इसी जन्म के लिए गायन है, जो भक्ति में भी गायन था ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कैसा भजन आता है भक्ति में। वो कौन से जन्म की बात है? वो पूरे साइकिल में जो भी जन्म हुए ना, थे हमारे इससे पहले के जन्म भी सारे मनुष्य के ही फॉर्म में थे, लेकिन ये वाला जो जन्म है, जिस जन्म में हम फिर से देवात्मा बनते हैं, बाकी तो हर दिन क्या हुआ, डाउनफॉल ही हुआ, इस संगम युग पर ही चांस है फिर से ऊपर चढ़ने का। तो ये वाला जन्म हमारा अनमोल है, इसलिए कहा गया इस जन्म को हीरे तुल्य जीवन। और वो जितनी भी बातें हमने सुनी है ना कि मनुष्य जन्म के बारे में, वो सब इस जन्म पे अप्लाई होती है। बाकी वो 83 भी थे मनुष्य ही जन्म, लेकिन दिस इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम इन आवर लाइफ इन द होल साइकिल। तो अभी ये क्लियर हुआ ना, हम सब मनुष्य आत्माएं मनुष्य के रूप में ही जन्म लेती है, हम में से कोई भी गाय कुत्ता बिल्ली सुअर नहीं बनता, उनकी योनि अलग है, उनके जन्मों के प्रकार अलग है। कई बार कुछ भाई बहने प्रश्न पूछते हैं कि हमने तो आज तक ऐसा सुना है, अगर छिप छिप के कुछ खाएंगे तो बिल्ली बनेंगे, छिप छिप के किसी की बातें सुनेंगे तो छिपकली बनेंगे, लेकिन अब बताइए मैंने गलत कर्म किए उसके बाद में बिल्ली और छिपकली बन गई, तो क्या बिल्ली और छिपकली को ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने कुछ रॉन्ग किया इस कारण वो बिल्ली और छिपकली है? क्या विचार है? वो तो ऐसा कोई रियलाइजेशन नहीं है ना। लेकिन आज हम अगर मनुष्य जीवन में हैं और हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो हम क्या कहते हैं, न जाने कौन से कर्मों की सजा मिल रही, हमारे मुख से यही शब्द निकलता है, अर्थात मेरे किए हुए कर्म मुझे मनुष्य जीवन में ही भुगतने पड़ रहे हैं। हम देखते हैं, कल भी बात की थी ना हमने, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आजकल रोड पर फुटपाथ पर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, जिसने जैसा किया वैसा फल वो पा रहे हैं। अगर वो वहां नहीं होते, उनकी जगह वो उसकी जगह है मनुष्य जीवन, लेकिन स्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है? कोई मनुष्य जीवन है कि चौराहे पर ही जन्म हो गया, चौराहे पर ही पूरा जीवन बीत गया? लेकिन है मनुष्य जीवन, लेकिन स्थिति वैसी ही है जैसी कि एनिमल्स की होती है। तो कहने का भाव है मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन है, ये संगम युग का हीरे तुल्य जीवन है। जब हमें स्वयं का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, तो हमें पीछे मुड़कर या पीछे रुक कर नहीं देखना है, आगे ही आगे समझ को यूज करते हुए आगे ही आगे इस लाइफ में बढ़ते जाना है। तो अभी हमारा कर्म सिद्धांत का जो कल थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, हमने आज उसको पूरे अच्छे से समझ लिया है। अगर का कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर उसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे. और आज हम बात करेंगे बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व की. हम लोग रोज पिछले 7 दिनों से, आज 7वां दिन है, 8वां दिन है, हम पिछले इतने दिनों से हर रोज अपना समय निकालते हैं, है ना, पूरे दिन से टाइम मैनेज करते हैं कि कैसे इस टाइम पर हम सभी फिर से एक साथ कनेक्ट हों. तो एक बात और एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना हम सबके लिए अत्यधिक आवश्यक है कि जिनकी वजह से आज हम, जिनके त्याग, तपस्या, कुर्बानी की वजह से आज हम सभी इस ज्ञान का फायदा ले रहे हैं. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमने ये जाना कि शिव बाबा ये सारा ज्ञान दे रहे हैं, हम यही कहते हैं ना रोज के परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया है, परमात्मा शिव बाबा जो हैं वो हमें ये सारा ज्ञान दे रहे हैं. लेकिन एक चीज यहाँ सोचने की आती है, हो सकता है आप सबने भी इस पर सोचा होगा, हम सब आत्माएं निराकार ज्योति स्वरूप है ना, लेकिन हमारे साथ में तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हमें ये पंच तत्वों से मिलकर के बना शरीर मिला है. आत्मा यहाँ है, इस मुख से बोल भी रही है, इन कानों से सुन भी रही है, इन आंखों से देख भी रही है ना. वी आर एबल टू डू एवरीथिंग, है ना, हम कुछ कर्म भी कर पा रहे हैं, हम अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं. लेकिन शिव बाबा वो कैसे हैं? शिव बाबा तो पॉइंट ऑफ लाइट है. क्या उनको हमारे तरह कोई शरीर है? नहीं है. तो अभी शिव बाबा ने इतना सारा ज्ञान जो हम पिछले 7 दिन से सुनते आ रहे हैं और आगे भी हम सुनते ही रहने वाले हैं महीनों तक, और शायद सारा जीवन हम सुनते ही रहने वाले हैं, ये सारा ज्ञान दिया कैसे शिव बाबा ने? फिर भी हमारे पास तो मुख है ना, हमने सब बोल लिया, सुन भी लिया, आया कैसे ये सारा ज्ञान? तो जैसे आत्मा को ये शरीर चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही शिव बाबा को भी तो कोई शरीर चाहिए होगा ना अपनी सारी बातें एक्सप्रेस करने के लिए. तो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किसके द्वारा एक्सप्रेस करेंगे? देखिए, राजस्थान के भी बहुत से भाई बहने इस कोर्स में जुड़े होंगे. राजस्थान, यूपी में तो बहुत कॉमन है ये सभी बातें कि कभी कभी हम सुनते हैं कि कोई मनुष्य है उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा आ जाती है, है ना, फिर कहते हैं पितर आए हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमारे घर के देवता हैं, ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं यहाँ पर. और उसमें क्या दिखाते हैं वो कि कोई और आत्मा जिसने कुछ समय पहले शरीर छोड़ दिया था, हमारे ही परिवार के कोई संबंधित है, वो अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया परंतु अब वो इनके उस दूसरे व्यक्ति के शरीर में आकर के अपनी जो अधूरी बातें रहती है उनको आके कंप्लीट करते हैं. तो आप में से कईयों ने सुना होगा, तो उसको कहते हैं पर काया प्रवेश. ये एग्जाम्पल यहाँ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जैसे एक साधारण मनुष्य आत्मा भी अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए किसी और मनुष्य के तन को ओवरटेक करके वहां आकर के उसमें आकर के अपना मैसेज दे सकती है, तो क्या परमात्मा किसी मनुष्य के तन का आधार लेकर के ये सारा राजयोग का ज्ञान हमें नहीं शेयर कर सकते? क्या विचार है आप? जब एक साधारण मनुष्य आत्मा, हम और आप जैसे, वो ही जब किसी और के शरीर में आकर के अपनी सारी बातें शेयर कर लेती हैं, तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो इस प्रकृति का, जो इस पंच तत्वों से मिलकर बनी प्रकृति का मालिक है, क्या वो किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके अपना ज्ञान नहीं दे सकते? क्या विचार? परमात्मा भी इस सृष्टि पर काया प्रवेश करते हैं, प्रकृति के पंच तत्वों को अधीन करके पर काया प्रवेश कर किसी दूसरे मनुष्य के तन में प्रवेश करके राजयोग का ज्ञान हम सभी आत्माओं को देते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कौन थे, वो कौन भाग्यशाली आत्मा है, वो कौन ऐसी श्रेष्ठ और महान आत्मा है सृष्टि पर जिसके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया. तो आज हम एक कहानी, बहुत शॉर्ट में कहानी तो इतनी है, हमारी संस्था की जो दादियां हैं और बड़ी दीदियां हैं अगर हम उनसे वो कहानी सुने तो उनको तो कई घंटे, कई हफ्ते और कई महीने लग जाएं वो कहानियां सुनाने में कि वो व्यक्तित्व कौन थे. लेकिन यहाँ हम बहुत शॉर्ट में, इसके बाद हम आपको कुछ वीडियो लिंक्स भी शेयर करेंगे जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वो पूरी जीवन कहानी देख पाएंगे. एक मूवी के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, लेकिन यहाँ अभी हम बहुत शॉर्ट में उस बात को, उस भाव को समझने की कोशिश करेंगे कि वो व्यक्तित्व कौन थे। ये बात है दादा लेखराज की, जिनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में सिंध कराची के इलाके में हुआ था, और एक सिंधी परिवार में दादा लेखराज का जन्म हुआ था। और इसके बाद ये जो फोटो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 1920 का फोटो है दादा लेखराज का। और दादा लेखराज का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, साधारण परिवार में हुआ, और इनके माता पिता ने भी बहुत छोटी उम्र में, माता ने तो बहुत जब ही छोटे थे तभी शरीर छोड़ दिया, और जो पिताजी थे वो एक स्कूल के हेडमास्टर थे, पर बहुत ही जब दादा लेखराज की उम्र छोटी तो ही उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था फिर, क्योंकि अकेले रह गए थे अब तो। उन्होंने अपने जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, जैसे ऐसा दुनिया में यही सिस्टम है, तो उन्होंने भी अपने चाचा के साथ में उनकी जो भी ग्रोसरी शॉप थी, किराने की, गेहूं का व्यापार था उनका, उनके साथ कुछ वर्क करना शुरू किया। पर ये जो बालक था दादा लेखराज, वैसे नाम तो लेखराज था पर सिंधी भाषा में बड़े भाई को दादा भी बोलते हैं, भारत में कई भाषाओं में बोलते हैं, बंगाल में जाएंगे तो भी बड़े भाई को दादा बोलेंगे, महाराष्ट्र में भी बोलते हैं, तो ऐसे वहां भी लोग उनको प्यार से फिर दादा लेखराज या लक्की बाबू कहते थे। और जो ये बालक थे लेखराज, इनके जीवन में बहुत ही जिसको कहे ना भक्ति भाव, ईश्वर के, श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। उम्र छोटी थी पर संस्कार बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत दिव्य संस्कार थे, दैवी गुणों से संपन्न संस्कार थे, व्यवहार में सरलता, सौम्यता, दान की प्रवृत्ति, ईश्वर के प्रति आस्था, भक्ति भाव, पूजा पाठ, ये सब कुछ करना इनका डेली रूटीन था। तो जब ये अपने चाचा के साथ बिजनेस किया करते थे ना गेहूं का, तो उनके शॉप पर बैठा करते थे, तो कई लोग उनके पास कुछ कुछ मांगने नहीं आ जाते दुकानों पर भी, तो जो भी कुछ मांगने आता ना वो उनको अच्छे से खुले हाथ से उसको वहां से उठा करके और अनाज दे देते थे। और वो चाचा जी देखते तो उनको तो अच्छा नहीं लगता कि भैया तो मेरे को एक दिन खाली करके ही छोड़ेगा, इतना इतना डोनेट करेगा, तो उन्होंने उनको कुछ कह दिया। तो उसी दिन से फिर बाबा ने डिसाइड किया कि फिर मुझे अपना ही, क्योंकि अगर मुझे कुछ डोनेट करना है तो डेफिनेटली आई हैव टू अर्न ऑन माय ओन, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपना ही कारोबार शुरू करना है। तो फिर वो वहां से मुंबई गए और वहां जाकर के उन्होंने ज्वेलरी का बिजनेस सीखा और फिर आकर के अपना बिजनेस शुरू किया। तो दादा लेखराज थे, इनका बिजनेस बहुत सारी जगह पर था, उधर तो था ही कराची, हैदराबाद में तो था ही, इसके अलावा कलकत्ता में भी उनका बिजनेस था, और उसके अलावा उनके जो, अब ज्वेलरी कौन खरीदेगा, ज्वेलरी कौन खरीदेगा, कस्टमर्स कौन होंगे, कौन होंगे ज्वेलरी शॉप के कस्टमर्स, कोई साधारण लोग तो नहीं खरीदेंगे ना ज्वेलरी शॉप के कस्टमर्स। नरेंद्रनाथ जी लिखते अमीर लोग खरीदेंगे या कोई राजा महाराजा खरीदेंगे, बड़े बड़े जो साहूकार होंगे वो खरीदेंगे। तो जो बाबा के जो कस्टमर्स थे वो भी सब अधिकतर राजा महाराजाएं होते थे। इधर अगर हम राजस्थान में देखें तो बीकानेर के महाराजा, उदयपुर के महाराजा, और विदेशों के भी कई बड़े बड़े लोग और राजाएं उनसे डील किया करते थे, तो जैसे नेपाल के राजा भी। तो ऐसे कई जगह बाबा का, क्योंकि बिजनेस ही ज्वेलरी का था, तो वो कई जगह, क्योंकि बड़े घर के जो लोग होते हैं तो शॉप्स पे नहीं जाएंगे ना खरीदने, तो जो वो दादा लेखराज थे ये सबके पास जाते थे, महलों में राजाओं के पास साथ इनका उठना बैठना था और उनको ज्वेलरी पसंद करवाना और सेल करना, ये सब इनका रूटीन था। और जो दादा लेखराज थे ना, उनके व्यक्तित्व में कुछ शुरू से ही ऐसी दिव्यता थी, क्योंकि श्री नारायण के अनन्य भक्त भी थे और संस्कार भी बहुत दिव्य, दान पुण्य के, और स्वभाव बहुत सरल सादा जीवन, और जहां जिस इलाके में ही रहते थे सिंध में, सिंधी परिवार के थे, तो वहां तो आप देखिए उस समय पर, ये बात हम कर रहे हैं 30s की 40s की, एक ऐसा जमाना था कि सब लोग, बहुत सारे लोग विदेशों में गए कुछ अर्न करने के लिए, इस कम्युनिटी के लोग, और बहुत हाई फाई लाइफ स्टाइल जिया करते थे, क्योंकि बाबा भी वही ज्वेलरी का बिजनेस वाला तो कैसा होगा ना, कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं होगा। तो बहुत ऐसी फैमिलीज थी जहां पर खाने पीने में भी नॉन वेजिटेरियन, शराब, मांस, मदिरा, ये सब उस इलाके में, उस कम्युनिटी में बहुत कॉमन थे। परंतु इन सबके बीच में भी बाबा का जो, दादा लेखराज का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही डिफरेंट था, इसलिए दुनिया उन्हें बहुत सम्मान भी देती थी। और जब ये एक बार तो कई बार तो उनको राजाएं और महाराजा ही कहते थे कि लक्की बाबू, प्यार से उन्हें लोग कहते थे लक्की बाबू। और उनके हेल्थ हाइट भी बहुत अच्छे, कद और काठी बाबा की दोनों ही बहुत अच्छी थी। उन्हें कई बार राजा महाराजा ही कहा करते थे कि भगवान से भी भूल हो गई है, राजा तो आपको बनाना चाहिए था, गलती से हमें बना दिया। क्योंकि उनकी संस्कार और दिव्यता इतनी थी। और एक बार कई बार ऐसा भी होता था कि बाबा जब महलों में जाते थे अपनी ज्वेलरी दिखाने के लिए, जो महारानी होती थी, जो रानी होती थी, वो अपनी बहू और बेटियों को वहां ही बुला लिया करती थी और उनको डायरेक्ट एंट्री की परमिशन होती थी कि नहीं, लक्की बाबू तो कभी भी आकर के अपना सामान सेल कर सकते, और उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता था या चिंता नहीं होती थी कि इस व्यक्ति को कैसे हम अपनी बहू और बेटियों के बीच में बुलाएं। इन सब के साथ साथ ही, क्योंकि ये सब भी चल रहा था और इसी बीच में जो लक्खीराज बाबू थे इनका विवाह भी हुआ, इनके 5 बच्चे भी थे और पूरा एक अच्छा गृहस्थ जीवन जी रहे थे। और श्री नारायण की अनन्य भक्ति के साथ साथ वो हर दिन, उन्होंने अपना नियम बनाया हुआ था, हर दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ वो हर सुबह अवश्य करते थे। चाहे कोई क्लाइंट आ जाए, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, उसको बोलते थे अभी वेट करिए, अभी मेरा पाठ का टाइम हो रहा है, मैं ये करके ही करूंगा। और जब रिश्ता बड़े लोगों के साथ होता है तो हम खुद भी जाते हैं और वो भी फिर हमारे यहाँ आते हैं। तो बाबा के घर में भी कभी कोई विवाह हुआ बच्चों का, या कोई पोते पोतियों का कभी कुछ जन्मदिन मनाया जाए, या बाबा के घर में कोई गेट टुगेदर होता था, तो ये बड़े बड़े लोग आते थे। और क्योंकि अब बाबा का जीवन तो बहुत सात्विक था, तो पार्टीज में ना तो कोई नॉन वेजिटेरियन फूड हुआ करता था, ना ही कोई मांस मदिरा। तो लोग कहते थे लक्की बाबू आपकी तो पार्टी फीकी रह गई, लोग ऐसे मुंह पर ही बोल देते थे। तो बाबा कहते थे कि ठीक है चाहे फीकी रह गई, लेकिन हम आपके लिए अपने नियमों और अपने सिद्धांतों को तो नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। वो आप अपने वहां अपने स्थान पर जाकर के भी वो सब चीजें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बाबा का जीवन बहुत ही दिव्य था और ईश्वर के प्रति जो उनकी इतनी आस्था थी, इतना गहन विश्वास था, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए ईश्वर को पाने के लिए। एक गुरु किए, उनसे ईश्वर के बारे में जाना, फिर दूसरे किए, संतुष्टि नहीं हुई तो खोज थी उनकी बुद्धि में एक। और ऐसे करते करते जब दादा लेखराज लगभग 60 वर्ष की उम्र के हुए, तो उनके घर में एक सत्संग चल रहा था। और घर में मना वो मुंबई गए हुए थे, उनके ही एक गुरुजी वहां पर आए हुए थे और उनके मुंबई में जो उनका घर था वहां पर सत्संग चल रहा था। और दादा लेखराज को एकदम से ऐसा लगा, जबकि भक्ति में तो कितना कहते हैं ना लोग के गुरु अगर सामने हो तो फिर गुरु का डिसरेस्पेक्ट या गुरु को छोड़ करके मनुष्य कहीं भी उठ के नहीं जाता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसी विचित्र घटना हुई कि बाबा बैठे तो थे सत्संग सभा में, लेकिन उनको बैठे बैठे ही कुछ ऐसा इंस्पिरेशन आया, कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वो उठ के गए, कुछ उनको हलचल हुई अंदर में। तो वो गुरु जी की सभा में से उठ करके दूसरे रूम में चले गए। पहले तो जो उनकी वाइफ थी जिनका नाम था जसोदा, उन्होंने भी जाते हुए देखा। फिर जो उनके बेटे की बहू थी उसने कहा अच्छा आप बैठो, मैं जाकर के देखती हूँ। तो उसने जब जाकर के उन्होंने बाबा को फॉलो किया एंड शी वॉज सरप्राइज कि भाई वो क्यों उठे, क्योंकि गुरु जी की क्लास में से तो कोई नहीं उठता, आज ऐसा क्या हुआ, तबीयत ठीक है कि नहीं है, ऐसी क्या बात है। तो जब उन्होंने वहां जाकर के देखा तो वो गेट पर ही रुक गई और देखा कि बाबा तो जैसे एकदम किसी और स्थिति में मगन है और बाबा के सामने और पूरे रूम में जैसे कोई स्पेशल डिवाइन लाइट, रेड कलर की लाइट फैल गई हो और बाबा की आंखों में से भी कोई रोशनी निकल रही हो और पूरा चेहरा जैसे बल्ब की तरह जल उठा हो। तो वो देखती रही बाहर खड़ी होकर के और कुछ ही क्षणों में उनको जैसे कुछ आवाज बाबा के मुख से निकलती हुई सुनाई दी, दादा लेखराज के मुख से। और उसमें 3 शब्द थे। पहला जो 3 लाइन्स थी वो ये थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। लाइन का अर्थ है मैं ज्ञान स्वरूप निराकार शिव हूँ, मैं प्रकाश रूप शिव हूँ और मैं आनंद रूप शिव हूँ। और कुछ क्षणों के लिए अनुभव चला और ऐसा लगा कि जैसे दादा लेखराज के मुख से ये आवाज सुनाई दी है और कुछ ही क्षणों में ऐसा लगा कि जैसे कोई वहां से चला गया, कोई लाइट थी जो आई थी और वो चली गई। और जब ये अनुभव समाप्त हुआ तो जो दादा लेखराज थे वो खुद भी सोचने लगे कि कौन आया था, हु केम टू मी। उनको लगा कि कोई तो आया था, क्योंकि कुछ ऐसा था, ऐसा अनुभव हुआ उनको कि कोई शक्ति थी, कोई एनर्जी थी जो मुझे कुछ अनुभव करा के गई है। पर उनको कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, पर वो अनुभव जो था उनको लगा शायद गुरु जी की कृपा हुई है, तो गुरु जी ने ये अनुभव मुझे कराया है। तो वो गुरु जी से, उन्होंने जो गुरु जी आए हुए थे उनको जाकर के फिर से उन्होंने बात शेयर करके समझाने की, ये जानने की कोशिश की कि ये क्या था। पर जैसे उन्होंने कुछ बोला तो गुरु जी के एक्सप्रेशन से उनको समझ आया कि ये तो कुछ और ही बात है। तो फिर उनको ऐसा लगा कि अब मुझे थोड़ा समय साइलेंस में बैठ के इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये क्या अनुभव हुआ है। तो वहां से फिर वो अपने, उनका, उनके एक मित्र रहा करते थे बनारस में, वो वहां पर जाकर के कुछ दिन, क्योंकि उनका बड़ा सा बंगला और गार्डन बाग बगीचे थे, तो बाबा ने कहा मैं थोड़े दिन वहां जाकर एकांत में समय बिताता हूँ और मुझे ये जानना है कि ये क्या हुआ था। तो जब बाबा वहां पर गए तो उनको और भी कुछ साक्षात्कार हुए, कुछ डिवाइन विजन्स उनको मिले जीवन में। उसमें उन्होंने देखा, एक उनको साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, जिसमें उनको विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, और उसमें एक मैसेज मिला तत्त्वम, तुम्हें ऐसा बनना है, ये तुम्हारा ही स्वरूप है, इसका अर्थ है तुम ये, तुम हो ये तुम्हारा ही स्वरूप है। फिर उनको समझ कुछ नहीं आया, परंतु ठीक है। फिर कुछ दिनों में उनको एक दूसरा साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार ने उनको बहुत हिला दिया अंदर तक। वो साक्षात्कार था इस कलियुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार। उनको दिखाई दिया कि ये सृष्टि खत्म हो रही है, कहीं से ज्वालामुखी फट रहे हैं तो कहीं से एटॉमिक बॉम्ब फट रहे हैं और संपूर्ण सृष्टि विनाश हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ये सृष्टि, कलयुगी दुनिया खत्म होती जा रही है। जब वो ये दृश्य देख रहे थे, जब वो ये साक्षात्कार कर रहे थे, तो उनकी आंखों से जैसे आंसू की धारा बही जा रही थी और वो कह रहे थे बस प्रभु बस, अब नहीं और नहीं देखना, इस दुनिया का विनाश आंखों से होते हुए देखना बहुत ही उनके लिए एक जिसको कहते हैं ना हिला देने वाला अनुभव था। तो अब उनका मन, जब से उनको ये साक्षात्कार हुआ तो उनका मन और भी इस दुनिया से उपराम हो गया, क्योंकि उनको लगने लगा है तो सब विनाश होने वाला है। और इसके कुछ ही दिनों बाद उनको फिर एक और साक्षात्कार हुआ और वो तीसरा साक्षात्कार था सत्ययुगी दुनिया का साक्षात्कार। उन्होंने देखा कि आत्माएं परम धाम से छोटे 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 सितारे इस सृष्टि पर आ रहे हैं और आकर के देवी देवताओं के रूप में आते बनते जा रहे हैं, देवी देवता के रूप में सृष्टि पर आते जा रहे हैं और चारों ओर स्वर्णिम दुनिया है, सोने के महल है और इतनी संपूर्णता है जैसे कि घी दूध की नदियां बह रही है, चारों ओर इतना सुंदर वातावरण, सुंदर प्रकृति। और जब वो ये साक्षात्कार हो रहा था तभी उन